आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है देवांगना द्विवेदी और हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे जिसमें वी हैव टू स्टार्ट विद द सिक्स्थ पॉइंट इन पेज नंबर 8 एंड द पॉइंट इज द्वीप। इसका मतलब है आइलैंड। आइलैंड क्या होता है कि समुद्र के बीचों बीच होता है, एक जमीन का एरिया होता है, जमीन होती है और आजू बाजू चारों तरफ इसके पानी होता है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। एक ऐसा स्थलीय भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो द्वीप कहलाता है। यह महाद्वीपों से छोटा होता है तथा नदी, तालाब, समुद्र या महासागर में कहीं भी स्थित हो सकता है, जैसे अंडमान व निकोबार द्वीप, समूह, लक्षद्वीप आदि। ये जो द्वीप होते हैं, ये छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं, ये चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं और ये महाद्वीपों से छोटे होते हैं साइज में। ये नदी, तालाब, समुद्र या महासागर कहीं पर भी हो सकते हैं और किसी भी, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा या बहुत छोटा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप अगर आप किसी अपने कमरे में रहते हैं, समझ लीजिए उतने बड़े कमरे जितना भी एक आइलैंड हो सकता है जिसके आजू बाजू सिर्फ पानी पानी हो। और इसके एग्जाम्पल क्या है? अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड। मैं एक बार बचपन में, मेरे पापा नेवी में थे तो मैं अंडमान निकोबार आइलैंड गई हूँ और वहाँ का जो व्यू होता है वो बहुत ही सुंदर होता है। आपको पता है जो समुद्र का पानी होता है वो कहीं कहीं पर एकदम हरा जैसा हो जाता है और कहीं कहीं पर एकदम नीला होता है। जैसे ये देखिए इस पिक्चर में जिसमें लिखा है द्वीप, इसमें देखिए इसके आसपास का जो पानी है वो ग्रीन ब्लू का कॉम्बिनेशन है और जो दूर दूर का है वो डार्क ब्लू है। तो आप लोग ये चीज भी सर्च करिएगा कि पानी का कलर चेंज क्यों हो जाता है। कहीं कहीं पर समुद्र का पानी रहता है एकदम डार्क ब्लू। मतलब मैंने अपने फादर, मेरे फादर जब नेवी में थे तो वो जो कैलेंडर लेकर आते थे, वो INS विक्रांत शिप में थे, तो वो कैलेंडर में जब वो पानी दिखता था ना तो एकदम डार्क ब्लू दिखता था। और आप लोग डिस्कवरी चैनल पे भी कभी देखिए तो किसी किसी समुद्र का पानी आपको लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन टाइप का दिखेगा और कहीं कहीं का पानी एकदम डार्क ब्लू दिखेगा। तो वो ऐसा क्यों होता है एक बार आप लोग सर्च करिएगा। ये सारी चीजें आपका नॉलेज बढ़ाएगी और आपकी उत्सुकता भी बढ़ाएगी जानने की। चलिए आगे पढ़ते हैं। असम में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। असम में जो ये ब्रह्मपुत्र नदी के पास जो द्वीप है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। नदी में स्थित, सागर में नहीं। मतलब आप लोग ये नहीं समझे कि फिर कि अच्छा वो तो कैसे बड़ा हो गया, वो तो नदी में है। वो सिर्फ नदी में सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है कि और कहीं पूरी दुनिया में किसी नदी में इतना बड़ा आइलैंड नहीं है। आपने जाना कि चारों ओर पानी से घिरा स्थलीय भाग को द्वीप कहते हैं, पर क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे स्थान को क्या कहेंगे जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो? ऐसे स्थानों को प्रायः द्वीप कहते हैं। दक्षिण भारत में एक प्रायः द्वीप है। अब देखिए जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है वो तो द्वीप कहलाता है, लेकिन जो सिर्फ तीन साइड से घिरा होता है उसे हम प्रायः द्वीप कहते हैं। चलिए अब एक पिंक बॉक्स यहाँ पे दिया है, हम इसको पढ़ते हैं, आओ करके देखें। पहला, अपने गांव या शहर का भ्रमण कर पता लगाइए कि आपके क्षेत्र में कौन कौन से धरातलीय स्वरूप हैं। अपने आसपास के किसी स्थल रूप का चित्र बनाइए। नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, बस आपकी जानकारी के लिए। अगर आप अपने जिस भी एरिया में रहते हैं वहां पर आप घूमने, इसी बहाने आपका घूमना भी हो जाएगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा। घूम के आइए, देखिए कि वहाँ कौन कौन से, आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं प्रैक्टिकली वो चीज़ों को अगर आप देखेंगे ना तो ज़्यादा याद रहेंगे और एग्जाम्स अच्छे से निकलते हैं। ये एक्टिविटी देने का मतलब यही होता है कि आप प्रैक्टिकली चीज़ों को समझें। चलिए सेकंड पॉइंट समझते हैं इसमें। अपने आसपास के पर्यावरण को देखकर जैव मंडल में पाए जाने वाले वृक्षों एवं जीवों की सूची बनाइए। ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक एरिया में जहाँ पर आप रहते हों वहाँ पर एक ही तरीके का पेड़ मिलता हो या सबको सेम मिलता हो। सबकी हैबिटेट्स, जहाँ भी लोग रहते हैं, सबका अलग अलग होता है। तो आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, कौन से पेड़ पाए जाते हैं, ये सारे चीज़ों के बारे में आप लिखेंगे तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप लोग बहुत ईजिली उसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए थर्ड पढ़ते हैं। आप नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, विभिन्न स्थलाकृतियों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। और ये हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है इसकी चर्चा कक्षा में अपने साथियों से कीजिए। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हमने सारे स्थलों के बारे में पढ़ा, सभी प्रकार के, तो हम अब इसके नाम लिखेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। पहला चित्र आप लोग बताइए, समुद्र से घिरा हुआ है ये चारों तरफ से, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा द्वीप। उसके बाद क्या है? उसके बाद आता है आपका बेसिन, फिर आता है आपका प्लेन, मतलब जहां पर प्लेन जो एरिया है उसे क्या बोलते हैं? मैदान, मैदान आता है। पहला है द्वीप, दूसरा है नदी बेसिन, तीसरा है मैदान, चौथा है हमारा पठार, और पांचवा अभी अभी हमने क्या पढ़ा? प्रायद्वीप। इसे क्योंकि ये तीन साइड से बस पानी से घिरा है, चारों तरफ से नहीं घिरा है। अगर चारों तरफ से घिरा होता तो ये समुद्र के बीच में होता, आजू बाजू पानी होता, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रायद्वीप। और जो आखिरी है वो तो देख के समझ में आ रहा है कि पर्वत है। अब हमसे ये बोला गया है कि आपको चर्चा करनी है कि ये सभी हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो देखिए, जो द्वीप है वो हमारे लिए इस प्रकार उपयोगी है कि वहां पर हम जाकर वहां के आसपास की जो भी हमें स्पीशी के बारे में रिसर्च करना है या कुछ भी करना है, तो उस द्वीप में उस एरिया की सारी स्पीशीज और सारे जानवर हमें मिल जाते हैं। और द्वीपों पर बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं, क्योंकि देखिए द्वीप कहाँ होते हैं? सागरों के बीच में स्थित होते हैं, या कोई भी पानी के एरिया बीच में स्थित होते हैं। तो वो द्वीप में क्या होता है कि वहां की जितनी भी जो पॉपुलर स्पीशी है, या वहां की जो भी एक कह सकते हैं कि जो भी जैसे जड़ी बूटी की मैंने आपसे बात करी, जो वहाँ की मेडिसिन, काफी द्वीप ऐसे होते हैं जहाँ पर मेडिसिनल क्वालिटी के प्लांट्स उगते हैं, तो रिसर्च के लिए वो सारी चीजें बहुत हेल्पफुल होती हैं। नाउ द सेकेंड पिक्चर इज ऑफ रिवर बेसिन। तो रिवर बेसिन की क्या खासियत है, क्या फायदे हैं हमारे लिए, वो कैसे हमारे लिए उपयोगी है? वो इस तरह से उपयोगी है कि जब हमारी जो रिवर है वो चट्टानों से, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से बहकर आती है, तो वो इतने प्रेशर से उसका पानी गिरता है कि जो चट्टान होती है वो उसको घिसने लग जाती है चट्टानों को, और उसको छोटे छोटे पत्थरों में और कंकड़ों में विकसित करती है। तो जो पत्थर पाए जाते हैं ना रिवर, ये गंगा वगैरह के अंदर, वो जो एकदम चिकने पत्थर होते हैं, वो कैसे पाए जाते हैं? क्योंकि वो पानी की धार से कट कट के और उसके अगेंस्ट हो के इतना स्मूथ हो जाते हैं, तो वो वहां से जितने भी मिनरल्स होते हैं सारे बहाकर लेकर आती है वो नदियाँ। तो उसके आसपास के जितने एरियाज होते हैं वो बहुत ज्यादा उपजाऊ धरती होती है वहां की, वहां पर खेती बाड़ी सब कुछ बहुत अच्छे से किया जा सकता है, और सारे जितने भी मिनरल वगैरह होते हैं सब कुछ वहां से लेकर आती है हमारी जो नदियाँ होती है, नदी बेसिन जो होती है, क्योंकि अलग अलग छोटी छोटी नदियाँ आकर इसमें मिलती हैं। तीसरा जो चित्र था हमारा मैदान का, इसमें आपको चित्र देखकर ही समझ में आ रहा है कि खेती बहुत अच्छे से होती है, और इसमें रोड बनाना और रेलवे लाइंस बनाना, ये सब बनाना बहुत इजी होता है, अच्छे से बन जाता है, उबड़ खाबड़ वाली जगह पर नहीं बन पाता है इतनी अच्छे से। फिर हमारा चित्र है पठार का। पठार का हमने पढ़ा था कि इसमें के निचले हिस्से में कृषि की जा सकती है, और इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है इसको ग्रेजिंग फील्ड की तरह यूज करते हैं। जिन लोगों के पास बहुत सारे पशु होते हैं, कैटल्स होते हैं, वो इसको ग्रेजिंग के लिए यूज करते हैं। फिर हमारा आता है प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप ऐसा होता है कि उसमें ना, मतलब वो काफी बड़ा हो सकता है, क्योंकि तीन तरफ से अगर सिर्फ समुद्र से घिरा है तो मतलब वो काफी बड़ा होता है। जैसे हमारा एंटार्क्टिका है, दैट इज नॉट आइलैंड, दैट इज प्रायद्वीप। तो वहां पर क्या होता है, अलग अलग वहां पर एक मतलब जीव जंतु और वहाँ पे जीवन रहता है, वहाँ पर विकसित हो जाता है, तो एक अलग हैबिटेट बन जाता है। तो हमें जो चीजें, हमें मान लीजिए वहां से मतलब रिसर्च करनी है, कुछ भी करनी है, तो हमें प्रायद्वीप से भी बहुत सी चीजें मिल सकती हैं। फिर हमारा आता है पर्वत। पर्वत हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी होता है, ये हमारा बॉर्डर बनता है। आपको पता है हमारे इंडिया, हिमालयाज जो है वो हमारे इंडिया को बॉर्डर करता है, और जो हमारे विपक्षी जो देश है उनसे बचाता है, तो वो हमारे लिए आप ये समझ लीजिए कि एकदम तैनात खड़ा है वो पर्वत हमारी रक्षा के लिए। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं, अगर वो कभी हम पर आक्रमण करना चाहें तो वो बहुत आसानी से कर पाते, क्योंकि और अगर अभी करना चाहें तो उनको वो पर्वत पार करना होगा, उसकी एक्सट्रीम कंडीशंस को सस्टेन करना होगा, जो कि इतना ईजी नहीं होता है। तो जितनी भी चीज़ें इसमें बताई गई हैं चित्र में, ये सभी हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम शब्दावली यानी ग्लॉसरी पर। पहला है जैव मंडल। पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवन है मतलब इकोसिस्टम, उसे हम जैव मंडल कहते हैं। परितंत्र, जैविक तथा अजैविक पर्यावरण का पारस्परिक अंतर संबंध, इकोलॉजिकल बैलेंस। खाद्य जाल, फूड वेब जिसे कहते हैं, परितंत्र की विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का आपसी जुड़ाव, मतलब अलग अलग ऐसे, मतलब टेढ़े मेढ़े कोई इसको खा रहा है, इसको भी कोई खा रहा है, ऐसे ऐसे करके मैंने आपको समझाया था ऊपर जो पिक्चर बना हुआ था उसके थ्रू, तो फूड वेब इसे कहते हैं। अब आ जाते हैं हम हमारे अभ्यास प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, सही विकल्प को चुनिए। इसमें पहला है, निम्न में से कौन सी एक प्रमुख प्रकृति स्थल आकृति नहीं है। पहला पर्वत, दूसरा पठार, तीसरा अधिवास, चौथा मैदान। सो द राइट आंसर इज थर्ड, दैट इज अधिवास। इसके बारे में तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, हमने बाकी तीनों के बारे में पढ़ा है, तो ये हमें नहीं पता क्या है, इसलिए ये सही आंसर होगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन कम्स, स्थलीय भाग को तीन तरफ से जल से घिरा हो उसे कहते हैं, पानी से घिरा होता है, अभी हमने लास्ट में ये चीज पढ़ी है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला द्वीप, दूसरा प्रायद्वीप, तीसरा सागर, चौथा महासागर। सो द राइट आंसर विल बी द सेकेंड वन, दैट इज प्रायद्वीप, अभी अभी हमने पढ़ा लास्ट पेज में। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, पृथ्वी पर चार महासागर हैं, कौन कौन से महासागर हैं, ये आपके दिए हुए हैं पेज नंबर 8 में, इनके नाम दिए हैं। देखिए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, ये आपके चार महासागर हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हिमालय में गद्दी, बकरवाल एवं भोटिया जनजातियां रहती हैं, जो वहां कौन सी ऋतु में प्रवास करती हैं। ठंड में करती है वहां पर प्रवास, मौसमी ऋतु में प्रवास करती हैं। देन थर्ड क्वेश्चन कम्स, स्थल का वह भूभाग जहां नदी और सहायक नदी बहती है, उस नदी का डैश कहलाता है, उस नदी का बेसिन कहलाता है, जहां सहायक नदी और दूसरी नदियां एक साथ कहती है, उसे नदी का बेसिन कहते हैं। चौथा आता है, स्थल पर एक प्राकृतिक धारा के रूप में बहने वाले जल को डैश कहते हैं, नदी कहते हैं, है ना, इसका आंसर होगा नदी। चलिए अब आ जाते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि है, जैव मंडल किसे कहते हैं, यह केवल पृथ्वी पर ही क्यों पाया जाता है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा, शुरू में है चैप्टर के, इसका आंसर है पेज नंबर 2 पर, सेकंड पैराग्राफ, यहां से शुरू होता है, पृथ्वी का वह समस्त भाग जहां जीवन विद्यमान है वह जैव मंडल कहलाता है। इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय जीव शामिल हैं। इसके साथ साथ विस्तृत और विविध वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्य इस जैव मंडल के हिस्से हैं। पृथ्वी की ठोस सतह को हम स्थल मंडल कहते हैं, जलीय भाग को जल मंडल और धरातल से ऊपर वाला हिस्सा जहां गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल कहलाता है। जब ये तीनों मंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो जैव मंडल की रचना होती है। ध्रुवों के बर्फानी प्रदेशों से भूमध्य रेखीय प्रदेशों की तीक्ष्ण गर्मी तक, आसमान से लेकर सागर की गहराई तक, चाहे जिस रूप में हो, पृथ्वी पर जीवन है। सूक्ष्मतः जीवाणु से लेकर बड़े बड़े पौधों और विशालकाय पशुओं तक, न केवल आकार में परंतु जीव जगत के प्रकार एवं पर्यावरण में भी विभिन्नता पाई जाती है। सो दिस विल बी योर आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। एंड नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 4 इज, परितंत्र और पर्यावरण की परिभाषा देकर उनमें अंतर बताइए। तो इसका आंसर हमें मिल जाता है हमारे पेज नंबर 3 पर, जिसमें जो टॉपिक है परितंत्र का अर्थ एवं महत्व। चलिए शुरू करते हैं, आंसर बताती हूँ मैं आपको। आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो कई ऐसी वस्तुएं भी दिखेगी जो निर्जीव है, जल, मिट्टी, पत्थर आदि सभी निर्जीव यानी अजैव हैं। इन्हीं निर्जीव चीजों के बीच पृथ्वी पर अनेक जीव पनप रहे हैं जिन्हें सजीव जैविक कहा जाता है। इन जैविक एवं अजैविक चीजों ने हमें चारों ओर से घेर रखा है और यही हमारे पर्यावरण का अंश है। सभी जीव आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसके साथ साथ अपने पर्यावरण से प्रभावित होते हैं और उसे भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार जीवों और पर्यावरण के आपसी संबंधों को जटिल व्यवस्था बन जाती है। इस जैविक तथा अजैविक पर्यावरण के पारस्परिक अंतर संबंध को ही परितंत्र कहते हैं। यह आकार में एक छोटे तालाब या अमेज़न के विशाल वर्षा वन के रूप में हो सकता है। यही नहीं, हमारी यह धरती भी एक विशाल परितंत्र है। आप पाएंगे कि पृथ्वी पर न केवल एक जीव दूसरे जीव से जुड़ा हुआ है बल्कि वह उसके पर्यावरण में मौजूद निर्जीव वस्तुओं से भी जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है खाद्य श्रृंखला क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 3 पर जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है वहां से इसका आंसर शुरू होता है। सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा उन्हें एक दूसरे पर निर्भर होकर और पर्यावरण से प्राप्त होती है। एक जीव दूसरे जीव को अपना भोजन बनाता है। पृथ्वी और उसमें निवासित हर जीव की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है जिसकी सहायता से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। यही ऊर्जा एक प्राणी से दूसरे प्राणी तक एक खाद्य श्रृंखला के रूप में हस्तांतरित होती जाती है। अगर हम एक जंगल को देखें तो पाएंगे कि कैसे पौधे जो सूर्य की ऊर्जा से भोजन बनाते हैं उन्हें हिरण या खरगोश खाते हैं। इन शाकाहारी पशुओं को शेर या भेड़िया खा सकता है। शेर या भेड़िये की मृत्यु के बाद उसके शरीर को अपघटक जीव मिट्टी में मिला देते हैं। यह एक सरल खाद्य श्रृंखला है। एक अन्य उदाहरण से भी हम इसे समझ सकते हैं। सूर्य की ऊर्जा से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तथा मृदा के पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधों से एक कीट अपना भोजन प्राप्त करता है, उसी कीट को चूहा, चूहे को सांप एवं सांप को बाज खाता है। बाज के मरने के बाद अपघटक जीव उसे मिट्टी में मिला देते हैं। इस प्रकार एक खाद्य श्रृंखला पूरी हो जाती है। तो ये हमारा 5th आंसर है। फिर आता है हमारा 6th क्वेश्चन जो कि है हमें परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 4 पे जो टॉपिक है हमारा परितंत्र का संतुलन। वर्तमान में मानव आर्थिक विकास के नाम पर अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए परितंत्र को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। मानव अपने कार्यों जैसे प्राकृतिक वनस्पति एवं जीवों का विनाश करना, मूल जंतुओं और वनस्पति के स्थान पर विदेशी जंतुओं और वनस्पतियों को स्थापित करना, विकास के लिए परितंत्र के संघटकों में परिवर्तन करना, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग करना, वायुमंडल की गैसों के अनुपात का बदलना, पर्यावरण को प्रदूषित करना आदि के द्वारा परितंत्र का संतुलन लगातार बिगड़ता जा रहा है। इसके दुष्प्रभाव के फलस्वरूप पृथ्वी पर जीवन संकट में पड़ जाएगा। अतः परितंत्र के संतुलन को बनाए रखना अति आवश्यक है और यह कार्य केवल मानव ही कर सकता है। हमें विकास के कार्य इस प्रकार करने चाहिए कि उससे परितंत्र का किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। मानव को चाहिए कि वह प्रकृति का दोहन कर लूट लेने की नियत ना रखे बल्कि उसका सहयोग करे, उसके साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करे एवं सतत विकास की ओर अग्रसर होने का प्रयास करे। सो दिस वॉज द आंसर फॉर अवर क्वेश्चन नंबर आई गेस 6 एंड नाउ द क्वेश्चन कम्स दैट इज नंबर 7 द्वीप किसे कहते हैं, क्या यह केवल समुद्र में ही मिलते हैं? इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 8 पर, जो हमारा 6th पॉइंट है द्वीप, उसके अंदर। चलिए पढ़ते हैं। एक ऐसा स्थलीय भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो द्वीप कहलाता है। यह महाद्वीपों से छोटा होता है तथा नदी, तालाब, समुद्र या महासागर में कहीं भी स्थित हो सकता है, जैसे अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप आदि। क्या आप जानते हैं असम में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? देखिए, ये जो पार्ट था ना, क्या आप जानते हैं से लेकर स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, इसको एलिमिनेट कर देना, ये नहीं होगा आंसर का पार्ट, इसके बाद से होगा। आपने जाना कि चारों ओर पानी से घिरे स्थलीय भाग को द्वीप कहते हैं, पर क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे स्थान को क्या कहेंगे जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो? ऐसे स्थानों को प्रायद्वीप कहते हैं। दक्षिणी भारत भी एक प्रायद्वीप है। दक्षिणी भारत मतलब हमारा साउथ का जो इंडिया है हमारा, वो तीनों तरफ से पानी से घिरा है, लेकिन एक साइड से पानी से नहीं घिरा है। तो देखिए, इसमें भी आपको ये क्या आप जानते हैं लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि जो स्थलीय भाग, पृथ्वी का वह स्थलीय भाग जो तीनों तरफ से पानी से घिरा होता है और एक तरफ मैदान या स्थल होता है, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, और हमारा दक्षिण भारत भी एक प्रायद्वीप है, ऐसा लिखेंगे हम। ठीक है, चलिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैदान के दो प्रकार कौन कौन से हैं? उदाहरण देकर उनकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 6 पे, पॉइंट नंबर 3, जो हेडिंग है मैदान। सामान्यतः समतल भूभाग को मैदान कहा जाता है। औसत समुद्र तल से इनकी ऊंचाई 300 मीटर से कम होती है। पृथ्वी के कुल स्थलीय भाग की सतह के लगभग आधे भाग पर मैदान पाए जाते हैं। ये नदियों द्वारा शोषित होते हैं और नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदा से जमने से इनका निर्माण होता है। इसी कारण ये बड़े उपजाऊ होते हैं और कृषि यहाँ अधिक मात्रा में होती है। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदान इसका अच्छा उदाहरण है। सपाट भूमि होने के कारण परिवहन आसान होता है और सड़क अथवा रेल मार्ग बनाने में बहुत आसानी होती है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी बहुत अधिक होता है, क्योंकि यहाँ लोग अधिक बसते हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, पहला तटीय मैदान जो समुद्र के किनारे है, तथा आंतरिक मैदान जो मुख्य भूमि पर नदियों द्वारा मिट्टी का निक्षेप करने से बनते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब हमारा चैप्टर खत्म तो हो गया है, लेकिन हम एक बार पूरा चैप्टर रिकॉल कर लेते हैं कि हमने शुरुआत से क्या पढ़ा था, क्या क्या चीजें थी चैप्टर में। तो हमारे चैप्टर का नाम है जैव मंडल और भूदृश्य, मतलब हमारी भूमि किस तरह से अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है और हमारा जो जैव मंडल है, जो हमारा इकोसिस्टम है, वो क्या है। तो पहला हमने पढ़ा जैव मंडल का अर्थ एवं महत्व, मतलब हमारे अर्थ में एक इकोसिस्टम की क्या इम्पोर्टेंस है और क्या रोल है, और उसके बारे में जाना हमने। तो हमने ये जाना कि जो जल स्थल है जो, उसे जलमंडल कहा जाता है, और जो मैदान होते हैं उसे स्थलमंडल कहा जाता है, जो हवा होती है, हवा में जो चीज़ें होती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं, और इन तीनों के इंटरकनेक्टेड जो होता है उसे हम कहते हैं जैव मंडल, यानी कि हमारा इकोसिस्टम। फिर हमने पढ़ा कि परितंत्र का अर्थ एवं महत्व। तो इसमें हमने ये जाना कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो लिविंग हैं वो किस चीज़ों से कनेक्टेड है, नॉन लिविंग चीज़ों से कनेक्टेड है, जैसे पानी और मिट्टी, ये नॉन लिविंग है, लेकिन वी सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, तो कैसे, और एनिमल्स को भी पानी चाहिए। बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मिट्टी में होते हैं, कुछ बहुत से ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं जो मिट्टी में रहते हैं, तो ये सारी कंडीशंस बहुत हेल्पफुल होती हैं, जो कि अजैव है, हमारे लिए निर्जीव है, लेकिन ये किनको जन्म देती हैं, जैविक चीज़ों को जन्म देती हैं, और ये प्रभावित, मतलब अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो हमारे एनवायरनमेंट बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट होगा। उसके बाद हमने इसमें आगे पढ़ा फूड चेन के बारे में, कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपनी जो एनर्जी होती है वो अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म से लेता है, और जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो सभी का सन होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो फूड चेन स्टार्ट होती है वो प्लांट से होती है। प्लांट को छोटे से ऑर्गेनिज्म ने खाया, फिर उसके बाद उसे थोड़े बड़े ऑर्गेनिज्म ने खाया, ऐसे करके एक फूड चेन बनती रहती है। और आखिरी में जो सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म होता है जब वो मर जाता है तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसको मिट्टी में डिकम्पोज कर देते हैं। फिर हमने फूड चेन के बाद फूड वेब के बारे में पढ़ा। अब फूड चेन में तो एक प्रॉपर चेन चलती जाती है जिसमें किस ऑर्गेनिज्म ने किसको खाया ये पता रहता है, लेकिन फूड वेब में कोई किसी को भी खा सकता है, तो वो एक खाद्य जाल होता है। उसके बाद हमने ये जाना कि इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखना क्यों ज़रूरी है। जो हम जो आजकल जो डेवलपमेंट हो रहा है, हालांकि अब तो काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं, लेकिन हम जो डेवलपमेंट पहले के टाइम पर कर रहे थे, वी वर कटिंग डाउन द ट्रीज एंड नॉट प्लांटिंग देम अगेन, पेपर के लिए ट्री काटना, टिम्बर के लिए ट्री काटना, बहुत सी चीज़ों के लिए हमें पेड़ पौधे की कटाई और अपने रहने के लिए आवास बनाने की योजना करने के लिए हम जंगल पे जंगल साफ किए जा रहे थे, तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर हम जो इकोलॉजिकल बैलेंस है अगर उसको बिगाड़ेंगे तो बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ इफेक्ट होगी। फिर हमने आगे अलग अलग प्रकार के जो प्रमुख स्थल रूप हैं उनके बारे में पढ़ा, जिसमें से पहला था पर्वत यानी पहाड़। तो हमारे जो पूरे विश्व में सबसे विशालतम पर्वत श्रृंखला है वो है हिमालय, माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय में स्थित है। लेकिन इसके अलावा भी एक पर्वत है जो कि समुद्र के अंदर है, उसका जो 10,000 मीटर का जो पार्ट है वो समुद्र के ऊपर निकला हुआ है, बाकी का पूरा पार्ट समुद्र के अंदर है। तो एक्चुअल में वही सबसे बड़ा माउंटेन माना जाता है, लेकिन हम उसे क्लाइंब नहीं कर सकते, या उसमें नीचे हम माउंटेन क्लाइंब करेंगे उसमें नीचे कैसे जा सकते हैं, तो इसलिए माउंट एवरेस्ट को बड़ा माना गया है। उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा पठार मतलब प्लेट्यू। तो दो मेन प्लेट्यू कौन कौन से हैं, डेक्कन प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू। इसमें हमने ये जाना कि इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो ग्रेजिंग के लिए यूज किया जा सकता है कैटल्स के लिए, और जो निचली भाग है हम इसमें कृषि कर सकते हैं। और हाँ, पर्वत में हमने ये भी जाना था कि वहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पर लोग बहुत लाइटली पॉपुलेटेड एरिया होता है, वो वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती है। फिर तीसरा हमने पढ़ा मैदान। मैदान में तो सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। मैदान कैसे बनता है, जो मिट्टी इकट्ठी करती जाती है, जो नदियाँ जो बहकर आती हैं ऊपर से, उन्हें मिट्टियाँ इकट्ठी करती गई, उससे मैदान बने हैं। मैदान में खेती अच्छे से होती है, और जो मैदान के पास अगर नदी है, नदी का किनारा है वो, तो वहाँ पर और भी अच्छे से खेती होती है, क्योंकि वो बहुत उपजाऊ और गुणवत्तापूर्ण मिट्टी होती है। और यहाँ पर रास्ता बनाना, रेलवे ट्रैक बनाना, ये सारी चीज़ें करना बहुत ही ईजी होता है। एंड ऑल्सो दीज एरियाज आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें करना बहुत आसान होता है, तो लोग सबसे ज़्यादा यही मैदानों में बसते हैं। फिर चौथा हमने पढ़ा था नदी बेसिन। नदी बेसिन के बारे में हमने ये जाना था कि एक नदी जो होती है वो पर्वत से निकलती है, फिर जो अलग अलग छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, सहायक नदी होती है, वो उनमें मिल जाती हैं, तो जिस जहाँ से वो मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, नदी बेसिन कहते हैं, उस एरिया को हम नदी बेसिन कहते हैं। फिर फिफ्थ हमने पढ़ा था समुद्र और तटीय मैदान। तो समुद्र और तटीय मैदान में हमने जाना कि जो छोटे छोटे सागर होते हैं, जो समुद्र होते हैं, उनको मिलाकर महासागर बनते हैं। और हमारे विश्व में चार महासागर हैं, और उनका नाम क्या है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर एवं आर्कटिक महासागर। तो हमारे इंडिया के पास कौन सा है, हिंद महासागर, दैट इज इंडियन ओशन। और हमने ये भी जाना था कि हमें क्या क्या चीज़ें समुद्र से मिलती हैं, हम क्या क्या चीज़ें उसमें से लेते हैं, हमारे लिए एक ट्रैवल रूट है जो हम सारी चीज़ें जो भी मंगाते हैं वो समुद्र से मंगाते हैं। फिर हमारा सिक्स पॉइंट आ जाता है द्वीप, दैट मीन्स आइलैंड। आइलैंड के बारे में हमने जाना कि जो चारों तरफ से जो भूमि घिरी रहती है पानी से, उसे हम द्वीप कहते हैं, और जो सिर्फ तीन तरफ से घिरी रहती है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो हमारा जो इंडिया है, दैट इज द ओनली प्रायद्वीप, मतलब वो इतना बड़ा प्रायद्वीप है। और हमने एग्जाम्पल्स क्या देखे थे, अंडमान व निकोबार और लक्षद्वीप देखा था। फिर हमने एक्टिविटी पढ़ी थी और ये सारे पिक्चर्स सॉल्व किए थे। तो इसी के साथ हमारा रिवीजन भी कंप्लीट होता है। सो हमारी क्लास यहीं पर अब खत्म होती है।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।